वरदान अरोड़ा के कहने पर गोयंका फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। वहां सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे कि आर्यांश ने प्लान किया था। आर्यांश खुद होटल के एक कमरे में बैठकर सब कुछ देख रहा था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने को आई, तब सबसे पीछे बैठे रिपोर्टर ने कुछ सख्त सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। वो न केवल दीवा और आर्यांश के रिश्ते पर सवाल खड़े कर रहा था, बल्कि कुछ दिनों पहले पृथ्वी कपूर की बर्थडे पार्टी में जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में भी उसे सब पता था। उस रिपोर्टर ने गोयंका फैमिली और बाकी लोगों के सामने ये रिवील कर दिया था कि कैसे आर्यांश ने अपने दादाजी की बर्थडे पार्टी में ये कहा था कि उसने दीवा को खुद के साथ रिश्ता रखने के लिए पैसे दिए थे। जब नवीन ने ये सब सुना तो वो गुस्से में उस पर चिल्ला पड़े थे, तो वहीं दीवा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। एक न एक दिन ये दिन आना ही था, लेकिन ऐसे हालातों में उसके पेरेंट्स के सामने सच आने वाला था इसके बारे में दीवा ने सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं आर्यांश ने भी ये सब देखा तो वो जल्दी से दौड़कर नीचे आया और उसने उस रिपोर्टर की कॉलर पकड़ ली थी। वो रिपोर्टर बुरी तरह हड़बड़ा गया था क्योंकि आर्यांश ने उसके मुंह पर जोरदार पंच मारा था। उसकी नाक से खून बहने लगा था। आसपास खड़े रिपोर्टर्स की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे इस घटना को अपने कैमरे में कैप्चर कर सके। आर्यांश ने उसका गला दबाते हुए दांत पीस कर कहा, किसने भेजा है तुम्हें यहां? मुझे उसका नाम बताओ इससे पहले कि मैं इसी पल तुम्हारी जान ले लूं। छोड़िए मुझे मिस्टर कपूर, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे किसी ने नहीं भेजा और मैं अपना काम कर रहा हूं। आपकी हरकतें मेरी बातों पर सच की मुहर लगा रही हैं, रिपोर्टर ने कसमसाते हुए कहा। वो आर्यांश को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था। मेरी हरकतें और सच के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे बताओ तुम्हें यहां किसने भेजा है? सौरभ बजाज के कहने पर यहां आए हो ना तुम? तुम यहां तक आ तो गए हो, लेकिन क्या लगता है इतना सब कुछ करने के बाद जिंदा वापस लौट पाओगे? आर्यांश ने उसे सबके सामने धमकाते हुए कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस वक्त वो लगभग 40-50 रिपोर्टर्स और गोयंका फैमिली के सामने खड़ा था। सार्थक और आर्यांश के सिक्योरिटी गार्ड तुरंत वहां पर आ गए थे और उन्होंने आर्यांश और उस रिपोर्टर को घेर लिया था। सार्थक ने इशारे से सभी रिपोर्टर्स को वहां से जाने के लिए कहा। अगर आर्यांश ने उन्हें पैसे नहीं दिए होते तो वे इस सबको रिकॉर्ड करके अपने चैनल की TRP हाई कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से आर्यांश उस रिपोर्टर को मारकर धमका रहा था, कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लग रहा था। उसकी जगह वे भी हो सकते थे। रिपोर्टर तिरछी निगाहों से आर्यांश को देखते हुए वहां से निकलने लगे। वहीं गोयंका फैमिली हैरान रह गई थी। नवीन ने जोर से चिल्लाकर कहा, आखिर चल क्या रहा है यहां पर? तुम यहां क्या कर रहे हो आर्यांश? तुम्हें रिपोर्टर्स के सवालों के बारे में कैसे पता? और वो सब क्या बकवास कर रहे थे? क्या तुम्हारी दादाजी की बर्थडे पार्टी में कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था मिस्टर गोयंका, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसे जरूर किसी ने यहां प्लांट किया है, उसके बारे में मैं पता लगा लूंगा। आप प्लीज जाइए यहां से, आर्यांश ने उन्हें जवाब दिया, लेकिन अभी भी आर्यांश ने रिपोर्टर का गला नहीं छोड़ा था। छोड़ो उसे आर्यांश, वो मर जाएगा, नवीन गोयंका आर्यांश की तरफ बढ़ते हुए बोले, लेकिन आर्यांश के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें आर्यांश के करीब तक नहीं जाने दिया। प्रार्थना दीवा के पास में खड़ी हुई थी। इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन दीवा एक बार भी आर्यांश को रोकने के लिए नहीं उठी थी। वो बस सिर झुकाकर अपनी जगह पर बैठी हुई थी। तभी दीवा को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। दीवा ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो वो प्रार्थना थी। वो रिपोर्टर सच कह रहा है ना? क्या तभी तुमने आर्यांश को छोड़ा है? प्रार्थना ने धीमी लेकिन बेहद सख्त आवाज में पूछा। मैं आपको इस बारे में बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी सही वक्त नहीं है, दीवा ने कांपती आवाज में जवाब दिया। जाकर रोको उसे, वो उसे मार देगा और तुम्हारे अलावा वो इस वक्त किसी की नहीं सुनने वाला, प्रार्थना ने दीवा की आंखों में देखकर कहा। अभी भी उसके चेहरे के भाव बेहद सर्द थे। दीवा ने बिना कुछ कहे नामे सिर हिला दिया था। वहीं सिर्फ मिस्टर गोयंका ही नहीं, सार्थक भी आर्यांश को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यांश अपनी जिद पर उतरा हुआ था। जब तक वो उस रिपोर्टर से उसे भेजने वाले का नाम नहीं जान लेता, तब तक वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। दूर रहो तुम सब, मुझसे और मेरे पास आने की कोशिश मत करना, आर्यांश ने जोर से चिल्लाकर कहा। उसने रिपोर्टर की आंखों में आंखें डालकर देखा और आगे बोला, अगले 5 मिनट में अगर तुमने उसका नाम नहीं बताया तो तुम्हारी जिंदगी के ये आखिरी 5 मिनट होने वाले हैं। उसका पता तुम्हें कहीं ना कहीं से लगा ही लूंगा, पर हाँ, तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। प्लीज प्लीज हेल्प मी, आप सब लोग अपनी आंखों के सामने किसी आदमी को मरते देख कर भी शांत हैं? आप कुछ कीजिए, ये पागल आदमी मुझे मार देगा, रिपोर्टर ने जैसे तैसे अटकती आवाज में कहा। वो आर्यांश से छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब उसे खुद के फैसले पर पछतावा हो रहा था जब उसने सौरभ बजाज की बात मानकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बारे में सोचा था। सौरभ ने उसे पार्टी की रिकॉर्डिंग भी दी थी जहां ये सब हुआ था। वो मन ही मन शुक्र मना रहा था कि उसने डायरेक्ट रिकॉर्डिंग चलाने के बजाय पहले कुछ सख्त सवाल पूछे, वरना अगर रिकॉर्डिंग पहले चली होती तो शायद आर्यांश उसे वो आखिरी 5 मिनट भी नहीं देने वाला था। आर्यांश का चेहरा लाल हो गया था। दीवा दूर से उसे देख रही थी। अब सब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। दीवा अचानक अपनी जगह से उठी और आर्यांश की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सार्थक ने उन्हें इशारे से साइड होने के लिए कह दिया था। दीवा आर्यांश के पास गई और उसे खींचकर उस रिपोर्टर से अलग किया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जबकि आर्यांश गुस्से से पागल हो रहा था। थकते नहीं हो क्या तुम ये सब तमाशा करते हुए? तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब कुछ ड्रामा तुमने किया था? दूर बैठकर सब कुछ आराम से देख रहे थे? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आएगा? तुमने जानबूझकर इसे यहाँ भेजा और अब दिखावा कर रहे हो कि तुम्हारे मामा ने ये सब कुछ किया है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी आर्यांश? दीवा ने भरी आवाज में कहा। उसकी मुठ्ठियां कसकर बंधी हुई थी। तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है? आर्यांश ने हैरानी भरे लहजे के साथ पूछा। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, बस एक रिक्वेस्ट है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो। आखिर तुम चाहते क्या हो? दीवा ने जोर से चिल्लाकर कहा। वो आर्यांश की हरकतों से बुरी तरह थक गई थी। तुम मुझे चाहिए दीवा, क्या अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया? आर्यांश ने जवाब दिया। दीवा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। वो आर्यांश का जवाब सुनकर हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दीवा अपने पेरेंट्स के सामने उसके साथ खुलकर बात नहीं कर सकती थी। दीवा ने आर्यांश के हाथ को कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए ऊपर ले जाने लगी। वो नहीं जानती थी कि उसे कहां जाकर रुकना था। दीवा को बस उसे अकेले में ले जाना था। चलते हुए आर्यांश ने कहा, मेरा रूम सेकेंड फ्लोर पर फर्स्ट रूम में ही है, रूम नंबर 3। दीवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ, वो ठीक उसी कमरे के सामने जाकर रुकी जहां आर्यांश बैठा हुआ था। आर्यांश ने की कार्ड से उसके लिए दरवाजा खोला। अंदर आते ही दीवा ने दरवाजा बंद किया और अपना हाथ झटक कर आर्यांश को खुद से अलग कर दिया था। दीवा और आर्यांश एक दूसरे के आमने सामने खड़े एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दीवा ने अविश्वास से सिर हिलाया और कहा, सहर जिंदा है, तुम जानते हो ना इस बात को, वो तुमसे प्यार करती है।
मैं उसे समझा दूंगा, आई प्रॉमिस। मैं उसका दिल नहीं तोड़ूंगा और हमेशा उसका ख्याल रखूंगा, पर एक दोस्त के तौर पर। वो बहुत समझदार है, वो समझ जाएगी, आर्यांश ने जवाब दिया। वो उम्मीद भरी निगाहों से दीवा की तरफ देख रहा था। आर्यांश के चेहरे पर थकान के भाव थे और उसकी आंखें हल्की लाल हो रखी थीं। उसका चेहरा देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो पिछली कुछ रातों से ठीक से सोया तक नहीं था। और तुम्हारा क्या? तुम हमेशा से ये दावा करते रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में शहर की जगह कोई नहीं ले सकता है। तुम सही थे, सच में मेरे इतने प्यार और एफर्ट्स के बावजूद मैं कभी उसकी जगह नहीं ले पाई, लेकिन मुझे कभी इस बात का मलाल नहीं रहा। आर्यांश, एक बार के लिए मैं मान लेती हूँ कि तुम सही थे और मुझसे बदला ले रहे थे, क्योंकि तुम अनजान थे, मेरे पेरेंट्स ने भी गलती की थी, पर अब सब खत्म हो चुका है, शहर बिल्कुल ठीक है, तो इस बदले का कोई मतलब नहीं रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दो और उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। इस बार दीवा गुस्सा करने के बजाय आर्यांश को आराम से समझा रही थी, इस उम्मीद के साथ कि वो समझेगा। आर्यांश ने तुरंत नामे सिर हिलाया और सख्त आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता नई शुरुआत, बार बार मुझसे नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ पहले ही शुरुआत कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने गलती की है, तुम मुझे सजा दो, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे तो मुझे उम्र भर के लिए छूने भी मत देना। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने इतने लोगों के सामने तुम्हारी इंसल्ट की, मैं उन सब लोगों के सामने तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, उनको सच बताऊंगा कि मैंने झूठ बोला था, अपनी फैमिली को सच बताऊंगा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। बोलते हुए आर्यांश दीवा के पैरों में गिर गया था और उसके पैर पकड़ लिए थे। दीवा ने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी, वो हमेशा से एक घमंडी इंसान रहा था। मैं ये नहीं कर पाऊंगी आर्यांश, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिए जख्म कभी भर पाएंगे, दीवा ने आर्यांश से कुछ कदम पीछे लेते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करके उन्हें साफ कर लिया था। मैं इंतजार कर लूंगा, आर्यांश ने सिर उठाकर दीवा की तरफ देखकर कहा। दीवा ने आर्यांश की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो खुद सच जानती थी कि वो कभी आर्यांश को माफ नहीं कर पाएगी। ऐसे में अगर वो उम्र भर भी इंतजार करेगा तब भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। आर्यांश अभी भी दीवा के पैरों में ही बैठा हुआ था। उसने दीवा के हाथ को पकड़ा और गहरी आवाज में कहा, मेरा यकीन करो, इस बार ये सब मैंने नहीं किया। अस्पताल में भी नीडिया डॉक्टर माया ने बुलाई थी, मैंने नहीं, लेकिन अस्पताल में मिस्टर वर्मा के बेटे ने जो कुछ किया वो सब हंगामा करने के लिए तो तुमने ही उसे पैसे दिए था ना? दीवा ने आर्यांश की तरफ देखकर पूछा, तो आर्यांश की नजरें झुक गई थीं। दीवा के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, तुम नहीं बदल सकते हो आर्यांश, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, और बदला लेने के नाम पर तुमने जो मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया है, मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को कभी संभाल पाऊंगी। प्लीज मुझसे दूर रहो, तुम शहर से प्यार करते थे, वो वापस आ गई है, उसके साथ रहोगे तो मुझे भूल जाओगे, जैसे मेरे साथ रहने पर उसे भूल गए थे। तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान है। दीवा ने अपना हाथ आर्यांश से छुड़ाया और वहां से जाने लगी। आर्यांश को समझ आ गया था कि इस वक्त दीवा के सामने माफी की बात करना या किसी तरह की उम्मीद रखना गलत था, उसे फिर से दीवा का दिल जीतना होगा। क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स की हेल्प कर सकता हूँ? आर्यांश ने पीछे से तेज आवाज में पूछा। इस वक्त उसे यही एक तरीका नजर आ रहा था जिससे शायद दीवा की नजरों में उसकी कुछ इमेज सुधर सकती थी। दीवा आर्यांश की तरफ पलटी और भौहें उठाकर बोली, उन्होंने पहले गलती की थी, पर हाँ, मुझे उनकी वजह गलत नहीं लगती है। ये सब तुम्हारा फैलाया हुआ मैस है और वे इस बार पूरी तरह इनोसेंट है, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम सब कुछ ठीक करो। आर्यांश ने हाँ में सिर हिला गया था। उसे कुछ राहत मिली कि दीवा ने उसे अपने पेरेंट्स की हेल्प करने की इजाज़त दे दी थी, भले ही वो इस वक्त उससे काफी कड़वाहट से बात कर रही थी। आर्यांश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई थी जो न जाने कितने वक्त बाद दीवा ने देखी थी। दीवा की मुठ्ठियाँ कसकर बंद हो गई थी। उसने गहरी सांस ली और आर्यांश की तरफ देखकर पूछा, अच्छा आर्यांश, तुम्हें मेरे पेरेंट्स गलत लगते हैं क्योंकि उन्होंने सहर के बजाय मेरी सर्जरी करवाई। पहले मुझे भी वे गलत लगते थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने इसकी वजह बताई तो ना जाने क्यों मुझे वे गलत नहीं लगे। तुम मुझे सेल्फिश कह सकते हो, लेकिन क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो, आर्यांश ने कहा। हालांकि इस वक्त उसके पेरेंट्स के खिलाफ कुछ भी बोलकर आर्यांश उसे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, पर सच तो ये था कि उसके पेरेंट्स के फैसले ने ही उसे बदले की इस राह पर चलने पर मजबूर कर दिया था। अगर फिर से मेरा और सहर का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारे सामने भी ऐसी ही सिचुएशन आई तो तुम किसकी सर्जरी करवाना सिलेक्ट करोगे? तुम्हारे मुताबिक अब तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, तो क्या एक बार फिर से अपनी सहर की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओगे तुम? दीवा ने तंज भरे लहजे में पूछा। आर्यांश के पास कोई जवाब नहीं था। दीवा ने सिर हिलाया और एक मायूसी मुस्कुराहट के साथ वहां से निकल गई थी। ले लो जितना वक्त लेना है, क्योंकि मैं दे रहा हूँ। रही बात तुम्हारे सवाल की, तो शायद तुम्हें मेरा जवाब सुनकर दुख हो, पर हाँ, मैं तुम दोनों को बचाऊंगा। तुम्हारे पेरेंट्स अमीर थे और वे अच्छे से जानते थे कि पैसे का इस्तेमाल करके कुछ भी हो सकता है। अगर वे पैसे देकर तुम्हारे लिए हार्ट खरीद सकते थे तो उन्होंने सहर के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने ये गलती की है, पर इसका मतलब ये नहीं दीवा गोयनका कि मैं कोई बुरा इंसान हूँ, आर्यांश ने बिना किसी भाव के कहा और उस कमरे से बाहर निकल गया था।